क्या हो अगर ये कहा जाए कि जीवन का जो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा अमृत जिसे हम कहते हैं, वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम पहले उस भयानक जहर को पीने की हिम्मत ना करें जो सब कुछ खत्म कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
बिल्कुल, थोड़ा डरावना भी लगता है सच कहूं तो।
हाँ, क्योंकि आम तौर पर हम लोग सफलता को या किसी भी अचीवमेंट को एक बहुत ही सीधी लाइन में देखते हैं, मतलब मेहनत करो और इनाम पाओ। लेकिन आज जिन लेखों और रिसर्च पर हम इस विस्तृत चर्चा में बात कर रहे हैं, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देते हैं।
और यही बात इस विषय को इतना पेचीदा बना देती है। सफलता या आत्मज्ञान का जो रास्ता है वो कभी भी इतना साफ सुथरा नहीं होता। उसमें पहले तबाही आती है, डराता है, और हमारे अंदर की जो सबसे गहरी बुराइयां हैं उनका सामना करना शामिल होता है।
सही कहा। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी गहरे दर्शन को समझने वाले हैं। हम हिंदू पुराणों की सबसे रहस्यमय कथाओं में से एक समुद्र मंथन के पन्नों को पलट रहे हैं।
हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बात की गहराई में जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कहानी है या फिर इंसान की चेतना, उसके जीवन के संघर्ष और उसके विकास का पूरा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है।
तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस कथा के आवरण को हटाया जाए और इसके भीतर जो जीवन दर्शन और आत्मबोध का विज्ञान छिपा है उसे बाहर लाया जाए। तो जो सुनने वाले इस कथा के बेसिक ढांचे से वाकिफ नहीं है, उनके लिए मैं जल्दी से एक रूपरेखा रख देती हूँ।
हाँ, ये जरूरी है ताकि सबको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए।
बिल्कुल। तो कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के सागर को मथने का फैसला किया था। उनका अंतिम लक्ष्य था अमृत पाना।
अमृत।
और इस महामंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी यानी एक चर्निंग रॉड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। अब जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को सहारा दिया। सुनने में तो ये किसी बहुत बड़ी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है ना?
शाब्दिक अर्थ में देखें तो हाँ, ये एक बहुत ही भव्य दृश्य है, एकदम सिनेमैटिक। लेकिन आज हम जो रिसर्च देख रहे हैं वो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ समुद्र कोई पानी या दूध का सागर नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये समुद्र हमारा ब्रह्मांड है, या यूं कहें कि हमारी अपनी चेतना यानी हमारा कॉन्शियस माइंड है।
और मंथन?
हमारे जीवन के वो प्रयास हैं जो हम खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।
अच्छा, मतलब ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही उथल-पुथल है।
यहीं से इस कथा का असली विज्ञान शुरू होता है मुझे लगता है, क्योंकि मंथन करने के लिए देवताओं को असुरों की मदद लेनी पड़ी, दोनों को एक साथ आना पड़ा।
बिल्कुल। एक छोर से देवताओं ने नाग को पकड़ा और दूसरे छोर से असुरों ने।
तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि अपने अंदर के असुर को मारो, बुराई को खत्म करो, पर यहां देवताओं और असुरों का साथ आना, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमारे विकास के लिए जरूरी हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसे ऐसे समझते हैं, देव हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे करुणा हो गई, अनुशासन, धैर्य, और असुर हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे हमारा क्रोध, लालच, ईर्ष्या या बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा।
महत्वाकांक्षा।
अब सोचिए, अगर भीतर कोई असंतोष न हो, कोई जिद या चुनौती ही न हो, तो क्या इंसान कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा?
एक मिनट, एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। क्या मतलब दोनों की जरूरत है? क्या ये नोट्स ये कह रहे हैं कि हम अपने गुस्से या लालच को पूरी तरह गले लगा लें? ये तो बहुत खतरनाक बात है।
हाँ, ये सुनने में रिस्की लगता है।
फिर तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा और कहेगा कि अरे, ये तो मेरे विकास के लिए जरूरी है।
नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लालच या गुस्से के आधार पर काम करने और उनके अस्तित्व को स्वीकार करने में बहुत बड़ा फर्क है। असुरों को मंथन में शामिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देवताओं ने असुरों के तरीके अपना लिए।
तो फिर इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया। बिना असुरों के मंथन की वो प्रक्रिया हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होता था।
अच्छा, फ्रिक्शन। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये मुझे उस बैटरी वाले कॉन्सेप्ट की याद दिला रहा है।
बैटरी वाला कॉन्सेप्ट?
हाँ, मतलब अगर मैं एक टॉर्च चलाना चाहूँ तो सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से काम नहीं चलेगा, मुझे नेगेटिव टर्मिनल भी चाहिए,
अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है।
है ना? दोनों टर्मिनल्स के बीच जो खिंचाव होता है, जो घर्षण होता है, उसी से तो बिजली पैदा होती है। तो मंथन की प्रक्रिया के लिए भी दोनों ऊर्जाओं का वो टकराव जरूरी था।
बिल्कुल बिना घर्षण के ऊर्जा पैदा नहीं होती। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हमारी इच्छाओं जो कि असुर हैं और हमारे आदर्शों जो देव हैं उनके बीच टकराव होता है, तभी हम जीवन में कुछ नया खोजने या खुद को मथने के लिए मजबूर होते हैं।
और वो जो मंथन का दर्द है वो उसी विरोधाभास से आता है।
एकदम सही।
तो जब ये मंथन शुरू हुआ, मतलब जब देवों और असुरों ने पूरी ताकत से उस क्षीर सागर को मथा, तो जाहिर है सबसे पहले खजाना या अमृत बाहर आना चाहिए था, लेकिन कथा बताती है कि सबसे पहले हलाहल विष निकला।
हाँ, सबसे पहला परिणाम
एक ऐसा जहर जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि इतनी मेहनत के बाद सबसे पहले जहर क्यों?
अगर हम इंसान की चेतना के विकास को देखें तो ये कारण और प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम अपनी चेतना का गहरा मंथन करते हैं, जब हम खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलते हैं, तो सबसे पहले अच्छी चीजें बाहर नहीं आती।
तो क्या आता है?
सबसे पहले हमारी सबसे गहरी छुपी हुई अशुद्धियां बाहर आती हैं। हमारे पुराने ट्रॉमा, हमारा डर और हमारी असुरक्षाएं सामने आती हैं।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने पिछले हफ्ते अपना स्टोर रूम साफ करने का सोचा था।
हाँ।
सालों से बंद था वो कमरा।
हाँ। और फिर क्या?
जब मैंने सफाई शुरू की तो खजाना तो दूर की बात है, इतनी धूल और जाले निकले कि मेरी सांस घुटने लगी। एक पल को लगा कि मैंने ये काम शुरू ही क्यों किया, इससे अच्छा तो वो कमरा बंद ही था।
और उस घुटन के समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो या तो कमरे को वापस बंद कर देते हैं या उस धूल से खुद को बीमार कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक मंथन में भी ठीक यही होता है।
मतलब लोग डर कर पीछे हट जाते हैं।
हाँ, जब हमारे अंदर का जहर बाहर आता है तो बहुत से लोग घबरा कर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन कथा में इस जहर का क्या होता है?
कथा में भगवान शिव आते हैं, वो उस हलाहल विष को पी लेते हैं, लेकिन उसे शरीर के अंदर नहीं जाने देते। वो उसे अपने गले में ही रोक लेते हैं, जिससे उनका गला नीला पड़ जाता है और वो नीलकंठ कहलाते हैं।
पर शिव ने ऐसा क्यों किया? वो इसे बाहर भी तो फेंक सकते थे।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। शिव का गले में जहर रोकना उमंग, त्याग और संतुलन का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। जरा सोचिए, अगर वो जहर को पूरी तरह निगल लेते तो वो खुद नष्ट हो जाते। हाँ, जहर है तो मारेगा ही।
मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मतलब है अपनी नकारात्मकता या गिल्ट को अपने अंदर उतार लेना, जो इंसान को डिप्रेशन में ढकेल देता है।
अच्छा, और अगर वो उसे बाहर थोक देते
तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। आज की दुनिया में इसका मतलब है अपने गुस्से या अपनी कुंठा को दूसरों पर निकाल देना, अपने परिवार पर या अपने दोस्तों पर।
जिससे आपके आसपास की दुनिया नष्ट हो जाती है।
बिल्कुल। तो गले में रोकने का मतलब है उस जहर को, उन कठिनाइयों या नकारात्मक भावों को स्वीकार करना, उन्हें होल्ड करना, लेकिन उन्हें ना तो खुद पर हावी होने देना और ना ही दूसरों पर फेंकना।
बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब हमें अपनी उस धूल या विष से भागना नहीं है, हमें ये मानना होगा कि हाँ, हमारे अंदर क्रोध है, तनाव है या डर है, हम उसे नकार नहीं कर सकते, पर हम उसे खुद को या दूसरों को खत्म भी नहीं करने दे सकते।
और यही वजह है कि अमृत तक पहुंचना इतना कठिन है। बिना उस विष को स्वीकारे और उसे संतुलित किए मंथन की प्रक्रिया जारी ही नहीं रह सकती। हलाहल के शांत होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद ही चेतना का सागर अपने असली खजाने देना शुरू करता है।
तो विष के शांत होने के बाद सीधा अमृत आ जाता है?
नहीं, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। विष को संभाल लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सीधा आत्मज्ञान मिल जाएगा। विष के बाद शुरू होती है भटकाने वाली चीजों की बारी।
हाँ, कथा के अनुसार इसके बाद दिव्य रत्नों की बारिश होती है। कुल 14 रत्न निकलते हैं। मैं जरा लिस्ट देखती हूँ। इसमें लक्ष्मी जी हैं, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, अप्सराएं, वारुणी देवी, चंद्रमा, शंख, पारिजात वृक्ष और दिव्य धन शामिल हैं।
बहुत लंबी लिस्ट है।
बहुत ही विविध लिस्ट है। पर एक बात बताइए, इस सूची में देवी देवता हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि चंद्रमा जैसा एक पूरा ग्रह भी है, ये कोई आम खजाने जैसा तो नहीं लगता? ये इतना मिला जुला स्पेक्ट्रम क्यों है?
यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि ये 14 रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। जो रिसर्च हम डिस्कस कर रहे हैं वो बताती है कि ये रत्न हमारी चेतना के विकास के अलग अलग चरण हैं।
मतलब माइलस्टोन्स हैं।
हाँ, माइलस्टोन्स। जब कोई इंसान सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है और अपने शुरुआती डर यानी विष को पार कर लेता है, तो उसके अंदर नई क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं।
थोड़ा और खुलकर समझाइए। जैसे कामधेनु और कल्प वृक्ष, जो इच्छा पूरी करने वाले माने जाते हैं, इनका मनोविज्ञान क्या है?
ये उस अवस्था का प्रतीक है जहां आपकी मेहनत और आपका फोकस इतना तेज हो जाता है कि आपकी जरूरतें और इच्छाएं आसानी से पूरी होने लगती हैं।
आप जो सोचते हैं वो असल जिंदगी में मैनिफेस्ट होने लगता है।
अरे वाह, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ?
कुछ कुछ वैसा ही।
हाँ।
और इसी तरह एरावत हाथी और उच्चैश्रवा घोड़ा उस प्रचंड ऊर्जा और गति को दर्शाते हैं जो सफल होने पर व्यक्ति के भीतर आती है।
गति मतलब स्पीड। हाँ, एक बार जब आप सफलता की राह पर चल पड़ते हैं तो एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बन जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है।
और ये अप्सराएं और वरुणी देवी, ये तो शायद कला और नशे का प्रतीक है।
बिल्कुल, अप्सराएं कला, सौंदर्य और भौतिक सुखों को दर्शाती हैं, और वरुणी जो कि मदिरा की देवी हैं, वो उस नशे को दर्शाती हैं जो सफलता और पावर मिलने के बाद अक्सर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।
ओहो, अब समझ आ रहा है। और चंद्रमा, उसका यहाँ क्या काम है?
चंद्रमा मन और शीतलता का प्रतीक है। विष की गर्मी और मंथन की उथल पुथल के बाद जो मानसिक शांति और स्पष्टता आती है वो चंद्रमा है।
मतलब ये सब एक इंसान के पूरे विकास की कहानी है, शांति, कला, शक्ति, पैसा, सब कुछ। लेकिन अगर अगर ये सब इतना अच्छा है तो ये भटकाने वाला कैसे हुआ? आपने कहा था कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं।
क्योंकि जब इंसान के पास शक्ति, पैसा, कला और मानसिक शांति आ जाती है तो अहंकार का जन्म होता है।
ईगो।
हाँ, इंसान सोचने लगता है कि मैं सबसे महान हूं, मुझे सब मिल गया। वो उन 14 रत्नों में ही उलझकर रह जाता है और भूल जाता है कि असली लक्ष्य तो कुछ और था।
असली लक्ष्य यानी अमृत। इन सब 14 रत्नों के आकर्षण के बाद अंततः वो लक्ष्य सामने आता है जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद शुरू हुई थी।
बिल्कुल, 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी वैद्य प्रकट होते हैं
और उनके हाथों में होता है वो अमृत कलश। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अमृत बटना है लेकिन देवों और असुरों में विवाद खड़ा हो जाता है। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धरकर आते हैं, एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक स्त्री का रूप, और ये अमृत देवताओं को बांटते हैं जबकि असुर उनके आकर्षण में उलझे रह जाते हैं।
ये मोहिनी वाला हिस्सा हमेशा से मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मतलब विष्णु जी ने छल क्यों किया? क्या असुरों के साथ धोखा नहीं हुआ? उन्होंने भी तो मेहनत की थी।
अगर हम इसे सिर्फ कहानी की तरह पढ़ेंगे तो शायद धोखा लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से मोहिनी माया या भ्रम का प्रतीक है। ये अहंकार और भटकाव का चरम रूप है।
माया यानी इल्यूजन।
हाँ, असुर वो प्रवृत्तियां हैं जो तुरंत मिलने वाले सुख और भौतिक आकर्षण के पीछे भागती हैं। जब आप अपनी परम सफलता के सबसे करीब होते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े आकर्षण जैसे पैसा, पावर या शोहरत मोहिनी बनकर सामने आते हैं।
और जो लोग उस माया में उलझ जाते हैं वो अमृत से चूक जाते हैं।
बिल्कुल, जो असुरों की तरह उस माया में उलझ जाते हैं वो असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। देवताओं ने मोहिनी की सुंदरता को देखा लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमृत पर था।
ये बहुत ही गहरी बात है। जब हम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हैं तभी सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो अब आते हैं इस कथा के सबसे अहम सवाल पर, ये अमृत आखिर है क्या? क्या ये सच में कोई ऐसा जादुई पेय है जिसे पीकर शरीर कभी मरेगा नहीं? क्योंकि आज की विज्ञान की दुनिया में शारीरिक अमरता जैसी कोई चीज तो है नहीं।
जो नोट्स हम देख रहे हैं वो इस भ्रांति को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि अमृत कोई जादुई लिक्विड नहीं है।
तो फिर क्या है?
अमृत का अर्थ है ज्ञान और आत्मबोध, यानी नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन।
आत्मबोध, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसे हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ेंगे?
इसे ऐसे समझिए, आज हमारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? या फिर सबसे बड़ा डर कि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
हाँ, ये डर तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है।
हम इसी डर में जीते हैं। आत्मबोध का मतलब है वो पल जब आप इन सारे डरों से ऊपर उठ जाते हैं। ये अमरत्व शारीरिक नहीं बल्कि अज्ञानता के अंधकार से मुक्त होकर शाश्वत सत्य को जान लेने की अवस्था है।
यानी जब ये समझ आ जाए कि हमारी असली पहचान इन छोटी छोटी बातों या इस शरीर तक सीमित नहीं है।
बिल्कुल, जब इंसान अपने अहंकार, अपने भ्रम और मृत्यु के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और ये जान लेता है कि उसकी चेतना कभी नहीं मरती, वो आजादी ही असली अमृत है। शारीरिक अमृत्व कोई मायने नहीं रखता, असली अमृत्व विचारों और चेतना का है।
अरे वाह, मतलब मंथन की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही भारी मानसिक संघर्ष से, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को टकराने देने से।
हाँ।
फिर उस टकराव से जो सबसे गहरे डर और ट्रॉमा निकले, उस जहर को गले में रोका गया,
संतुलित किया गया।
हाँ, फिर जब सफलताएं और पावर मिली तो उनके अहंकार में बिना उलझे उस माया को पार किया गया, और तब जाकर वो आजादी मिली, वो आत्मबोध मिला जिसे हम अमृत कहते हैं।
इस पूरे सफर में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सीधे अमृत तक छलांग नहीं लगा सकते। आपको मथनी चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का घर्षण चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हलाहल का सामना करने की हिम्मत चाहिए।
बिना उस संतुलन के वो 14 रत्न और अंत में अमृत कभी बाहर नहीं आते। आज की इस चर्चा ने सच में एक ऐसा नजरिया दिया है जो दिमाग की बत्ती जला देता है।
हाँ, ये पूरी तरह से जीवन का दर्शन है।
जो कहानी हमने बचपन में सिर्फ एक जादुई लड़ाई की तरह सुनी थी, वो दरअसल हमारी अपनी ही कहानी है। ये हमारे हर दिन के संघर्ष का मैप है।
और ये कथाएं हजारों सालों से इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि इनमें इंसान की वो बुनियादी सच्चाई छुपी है जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलती।
और इसी गहरी समझ के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं। समुद्र मंथन केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है।
बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि बिना संघर्ष के अमृत नहीं मिलता।
लेकिन इस बातचीत को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरी चर्चा को आज के हमारे जीवन से सीधा जोड़ता है। समझे, तो आज के इस आधुनिक मंथन में वो कौन सा हलाहल विष है जिसे हम निगलने या स्वीकार करने से डर रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
क्या वो कोई ऐसी पुरानी गलती है जिसे हम मानना नहीं चाहते? क्या वो कोई ऐसा सच है जिससे हम भाग रहे हैं? क्योंकि इस कथा ने हमें आज एक बहुत बड़ा सच बताया है। जब तक उस विष का सामना नहीं होगा, जब तक उसे अपने गले में धारण करने की हिम्मत नहीं आएगी, तब तक हमारी अपनी जिंदगी का वो असली अमृत, वो असली सुकून कभी बाहर नहीं आएगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।